ప్రతి సంకలనం చేస్తాను.
प्रभु के प्रति किसमें इसमें प्रीति का वास है, प्रतीति पास है, पर्याप्त होगी. अब इसकी नई ज्योति चली भी जाए कोई चिंता नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु स्थिति से दूर, प्रभु नीति से दूर इसके कर्म नियमों में नींद कम पड़े. ये अभिव्यक्ति एक चीज तो पहले कह दूं कि कविता के अर्थ नहीं होते, है ना, भाव होते. तो अपन शब्दों का अर्थ तो नहीं निकालेंगे, भावार्थ निकालेंगे. तो जब भी हमारे मन में भगवान की भक्ति का प्रश्न उठे तो हम ये देखें कि किसमें प्रभु के प्रति भक्ति है. ये बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, ये बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, दुनिया बहुत अच्छी भक्ति करती है, ऐसा नहीं. मुझमें किसमें, मेरे अपने आप प्रभु के प्रति किसमें, तो कहते मेरे अपने मन में प्रीति का वास है, उनके प्रति मेरे मन में आदर है, स्नेह है. और प्रतीति वही जो आदर या स्नेह है वो धीरे धीरे प्रतीति बनता है, इसी को मैं श्रद्धा भी कहते. तो ये श्रद्धा हो गई, बस पर्याप्त है, ये इतना हो गया अगर तो पर्याप्त है. ये जो भीतर की आंख मिल गई है वो पर्याप्त है, बाहर की ये जो नैनों की ज्योति है वो चली भी जाए तो कोई आवश्यक मैंने हमें उससे चिंता नहीं है. पर इतना जरूर है कि नैन ज्योति चले जाने के बाद भी जब जब भी हम भगवान की स्तुति करें, जब जब उनके चरणों में झुकें, तो हमारे आंखों में श्रद्धा के आंसू या करुणा के आंसू आना कम ना, क्योंकि वही तो हमारे पास है एक चीज श्रद्धा. वाणी करके श्रावियन भगवान, जैसे ही आपके दर्शन किए तो वाणी गदगद हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया और नैनों से इतने आंसू गिरे कि पूरा शरीर ही भीग गया. ये भक्ति की प्रगाढ़ता है, उसी को ऋषि ने यहाँ व्यक्त किया है कि श्रद्धा हो गई. अब श्रद्धा होने के बाद मुझे जो एक भीतरी आँख मिल गई है तो मैं निश्चिंत हो गई. अब मेरी बाहरी आँख उतनी जरूरी नहीं है, बाहरी आँख से तो सिर्फ आंसू ही गिर सकें इतना ही पर्याप्त है, वे आंखें चाहे देख पाए या न देख पाए. एक जगह उन्होंने कहा है कि जो आंख दुनिया भर की सब चीज़ें तो देख लेती है लेकिन जिसमें करुणा के दो बूंदे नहीं है तो वो आंखें होते हुए भी आंखें नहीं. इससे अच्छा तो अंधे की आंखें हैं जिसमें से दो आंसू तो गिर जाते हैं. ये उन्होंने अभिव्यक्ति इसमें दी. कई बार अपने प्रवचन में उन्होंने ये चीज कही कि जो भीतर का की रोशनी है वो रोशनी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर बाहर की आँख की रोशनी नहीं भी हो कभी उसकी करना सूखती नहीं है, श्रद्धा सूखती नहीं है. तो ये सजग श्रद्धा है.
तो आंसू गिरेंगे
इन्हीं के बाद हमसे, तो इसलिए ये चाहिए हमको. और ये देख पाए दुनिया ना देख पाए इसकी हमें जरूरत नहीं है, पर ये इतना काम जरूर करें इनकी रोशनी चली जाए लेकिन इनमें से आंसू गिरना बंद ना हो जाए, क्योंकि वो मेरी भीतर की श्रद्धा को व्यक्त करें.
पूरी थोड़ी सुनाऊंगा, हम पहले समझ गए थे. शुरू हो जाएगा तो इतनी बड़ी किताब है शुरू कर रहा है हमसे शुरू कर रहा है एक हाथ तो कुछ शुरू कर
रहा
है.
प्रकृति कामना प्रेम बस पुरुष से दिखती हरिताप प्रणय करी महती गंध से तुम थुम पर रत्ता बना सकी, किंतु पुरुष सचेत है, वो डूबा नहीं, प्रकृति उसमें डूबी है। पुरुष की आंखों में गिरा मिश्रित मिलाप बस रही। ये जो है एक अभिव्यक्ति है, चारों तरफ विषय भोग की सामग्री फैले होने के बाद भी पुरुष में उसमें नहीं डूबा है, वो सारी सामग्री उसके भीतर डूबी। हमारे भीतर संसार न रहे, हम मलिन संसार में रहे हैं, ये उसकी अभिव्यक्ति है। कि प्रकृति तो हो गई पूरी की पूरी प्रमदा, प्रमदा मतलब आतुर है जो विवाह के लिए, उसे हो गए प्रेम बस पुरुष से लिपटी हुई और प्रेम बहुत स्नेह के साथ में वो पुरुष के पास आकर के खड़ी हो गई स्नेह से। हरिताम हंस पड़ी, प्रकृति का प्रतीक है कि जब वो हरियाली उसके अंदर उग गई है तो वो इस बात की प्रतीक है कि वो परिणय के लिए प्रस्तुत है। ऐसा करके जो है उसका वो प्रणय कली, अब उसके भीतर से जो है कलियाँ फूट रही हैं, वो भी प्रतीक हैं इस बात की कि वो आतुर है विवाह के लिए। पुलकित पड़ी रक्ता अवलस रही और उसके भीतर जो है लालानी भी आ गई, उस बात की ये सारी चीज़ें प्रतीक हैं कि वो प्रस्तुत है। किंतु पुरुष सचेत है, जो कहना चाहिए भोग सामग्री और भोक्ता दो चीज़ें हैं। तो ये बाहरी जो सामग्री है वो कब हमारे लिए के परेशानी में डालती है, जबकि हम सचेत हों, हम गाफिल हों, जिसको अपन मोह कहते हैं, हम मोहित हो जाएं तो चीज़ें हमें मोहित नहीं करती हैं, हम मोहित हो जाते हैं, चीज़ें हमें नहीं पकड़ती हैं, हम उनको पकड़ते हैं। ये प्रतीकात्मक है। तो पुरुष सचेत है, वो डूबा नहीं है, प्रकृति उसमें डूबी। पुरुष और प्रकृति इन दो के मिलन से पूरा संसार, ये सांख मत है। अपन जैसे मानते हैं ना कि जीव और पुद्गल मिलकर के पूरी सृष्टि बनी है, दो चीज़ें दो ही तत्व मूलभूत हैं, ऐसे ही एक सांख दर्शन है, वो मानता है कि पुरुष और प्रकृति ये दोनों से ही सृष्टि बनी है। और पुरुष तो अपने आप में ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव है, जैसे कि निश्चय ऐसे कहें कहते ना अपन लोग के लिए, तो ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो पर्यायों में परिवर्तन होता है। ये जो एक फिलॉसफी है, ये सांख्य दर्शन है, जो एकांत से ये मानता है कि पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन प्रकृति में होता, मतलब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो शरीरगत है, बहुत बाहरी है, ऐसा करके वही यहाँ तो वो डूबा नहीं है, प्रकृति उसमें डूबी है। पुरुष की आंखों में हीराग मिश्रित नीलाभ बस रही है, भले ही हरियाली वो उसे कहना चाहिए प्रेरित कर रही है, लेकिन इसके बाद भी नीला आकाश का जो नीलापन है वो बहुत सुभ्र और स्वच्छ, उसका हृदय मतलब नीलाभ, नीली आभा किस चीज़ की प्रतीक है, वो आकाश की स्वच्छता की प्रतीक है। और हाँ, गहराई की प्रतीक भी है और स्वच्छता की प्रतीक भी, नीली झील होती है तो गहरी भी होती है और बाहर भीतर उजलापन भी। और जो हरियाली है वो प्रतीक बनाई है प्रकृति के लिए कि वो उसको कहना चाहिए प्रेरित करती है कि वो विकार की तरफ बढ़े। ये तो इस तरह से उसके हीराभ मिश्रित हीरे की आभा वाली नीलिमा या नीलाभा छाई, ये मतलब वो शांत है, सब कुछ होते हुए भी बाहर
से क्या मतलब है कि हीरे की आभा वाली
हीराव मिश्रित नीलाभ बस रही उसकी आंखों में। अब एक्सप्रेस करना है, जैसे अपन कहते हैं अताम नैनोत्पलम सकल गोप बनिए जया, हे भगवान लाल आंखें आपकी नहीं है, इसलिए मालूम पड़ता है कि आप बाहर भीतर क्रोध को जीत चुके हैं, है? तो हाँ महावीर अष्टक ये अब हमें ये दिखाना है कि आंखें ये शो कर रही हैं कि उसके भीतर जरा भी इन चीज़ों ने प्रवेश नहीं किया है, कई चीज़ें इसके मन को जरा भी नहीं बिगाड़ पाई। देखो तो आंखें कैसी हैं, हीरे की आभा वाली है, एकदम शाइनिंग है, हीरे की आभा, हाँ हीरे की आभा, अरे हीरा भी जो है ग्रीनिश होता है तो हीरे की आभा, लेकिन नीलाभ बहुत गहरापन और बहुत उज्ज्वलता होना
है। ये टेक्नोलॉजी में भी आता है ना, एक मन की क्षति अमर मंगला है, हाँ गर्भ से भी अधिकार
मरुदाम चलता चलाना दीपो बरस को मसीना नहीं इसके पहले
सातवा या आठवा
वो इसका प्रतीक
वही भाव है,
वही भाव,
वही भाव।
और पूरी कली की सृष्टि कली से कलुषित कलंकनी दृष्टि सदा शंकनी अवधूत अंकनी कभी कभी तो गुण का चयन कर लिया कर तेरी वंकिन दृष्टि में केवल प्रगुणी झलकते हैं क्या यहाँ गुण ही बिखरे हैं तरकमता हो भले ही ऐसा कोई जीवन नहीं है कि जिसमें एक भी गुण नहीं मिलता हो नगर उपनगर में पुर गोपुर में अप्रिम लिहा प्रासाद हो या कुटिया जिसके पास कम से कम एक तो प्रवेश द्वार होता अवश्य कई बार कह चुका हूँ कि अपेक्ष कहते हैं कि चाहे अप्रिम लिहा मतलब आकाश को चूमने वाला प्रासाद महल इतना ऊर्जा महल भी क्यों ना हो जो कि आकाश को छूता हो और चाहे इतनी छोटी सी घास फूस की कुटिया भी क्यों ना हो एक आने जाने का प्रवेश द्वार तो होता ही है ये प्रतीक है कि इसी तरह हर छोटे बड़े व्यक्ति में एक गुण तो होता ही और तुम हमेशा से जो है अवगुण ही देखने वाली दृष्टि हो तो दृष्टि के लिए समझा रहे हैं कि ओरी कली की सृष्टि कली मतलब होता है ये कलिकाल जिसको अपन कहते हैं ना विकृत काल कली से कलुषित कली जो है कल की बोलते हैं उसी का कली है जो भ्रष्ट धर्मभ्रष्ट राजा तो कहते हैं उससे कलुषित कलंकनी दृष्टि तेरी दृष्टि ही अपने आप में खराब है सदा शंकनी इसलिए हमेशा शंका ही शंका करती रहती है अवगुणंकनी और तुझे सिवाय अवगुणों के और कुछ दिखाई नहीं पड़ती तो कभी कभी तो गुणों का चयन कर लिया करें ये उससे कह रहे हैं कि कभी कभी एक आध एक गुण तो हरेक में होता है उसका चयन भी कर लिया करे तुम्हारी बंकिम दृष्टि में तो केवल अवगुण ही झलकते हैं क्या हम तुमसे पूछना चाहते हैं ऐसा करके जो है मूल तो जो है वो नीचे वाला ये ही है कि ऐसा कोई भी जीवन नहीं जिसमें एक भी गुण नहीं हो जैसे कि प्रतीक दिया है जैसे कि नगर हो चाहे उपनगर चाहे पुर हो या कि गोपुर हो बहुत बड़ा प्रासाद हो या कि छोटी सी कुटिया हो एक न एक प्रवेश द्वार तो खरीद नहीं रहता है इसी तरह चाहे क्षुद्र जीव हो चाहे बहुत बड़ा हो सबके भीतर एक न एक गुण तो होता ही है अब हमारी दृष्टि का भेद है कि अगर वो हर जगह बुरा ही देखना चाहे तो अच्छा कहीं नहीं देखना पर होता तो है ये कब से आ रहा हूँ अपार सागर में तैरता तैरता ये अपार सागर भाव सागर से लेना कब से आ रहा हूँ अपार सागर में तैरता इस भाव सागर में तैरता हुआ मैं बहुत समय श्लक थका निदान श्लक थका निदान मेहरबानी की अनुभूति बहुत निर्बलता मालूम पड़ रही है अब इस क्षण में क्या कह रहा है अपने भगवान से कि अब और नहीं और मतलब अभी वो है क्षितिज इतनी दूर दिख रहा है अब तो हाँ किनारा चाहिए अब छोर भी नहीं अब और नहीं छोर भी एक अर्थ ये भी है दूसरा अब और नहीं और के लिए और भी ले लिया है अब और नहीं छोर भी अब कहाँ तक तैरूँ ये कहते हो कि वो आया किनारा ऐसा और आगे बढ़ाते जाते अब और नहीं अब तो छोर मिल जाए ये कि भाव सागर में इतने हम हमेशा से तैरता आ रहा हूँ अब तो बहुत थक गया हूँ निर्बलता की अनुभूति भी हो रही है इसलिए अब और नहीं छोर मिले चारों ओर भ्रमर शिविर फैला है भ्रमर मतलब होने के समान काला भ्रमर के समान दिव्य अंधकार चारों ओर अंधकार फैला है फैलता जा रहा है लेकिन चरण चल रहे हैं मैं इतने वर्षों से चला आ रहा हूँ आस्था के साथ क्योंकि साथ में आस्था इसलिए चरण साफ रास्ता है साफ रास्ता है मोक्ष मार्ग एकदम सीधा साधा है कहीं कोई उसमें वो नहीं है पर धरती कहती है पर फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास आस्था है रास्ता एकदम सीधा है मैं और चल सकता हूँ लेकिन लेकिन अब नहीं, अब तो घोर नहीं, घोर नहीं, अब तो ये अंधेरा हटे और मुझे कोई सुबह
बुद्धि कहती है ना, बुद्धि है
बुद्धि। सरल थी ये आचार्य ने शास्त्री में लिखा। मैं पहले प्रेयर किया करता था आचार्य जी को, वो ऐसे नहीं लिखते थे, वैसे लिख लेते थे। हमने कहा कि आप ऐसे ये ऐसे लिखेंगे तो आपकी दुकान खुल जाए, क्योंकि तीसरी को बोलते हैं दुकान। हमने कहा ऐसे शनास्ती में तो बड़ी मुश्किल में ऐसे लिखवा करके और ये छपवाई थी, नहीं तो वो तो ऐसे लिखते रहते अपने गद्य में जैसे लिख रहे हैं, तो उनको ऐसे बना दिया था। तो फिर वो लिखने लगे, बोले अच्छा ऐसा लिखना है तो ऐसे हम लिखेंगे।
भावना
तो थी, उनको अभिव्यक्ति देने के लिए। तो अपना ही गीत गुण बनाता है ये स्वैर बिहारी बना, ये अपना मन, तुम तो अपने राग लगाता है, ऐसा कह रहे थे मन कि तुम्हें तो अपने राग लगाते हैं, मतलब अपने मन की तुम्हें करने की पड़ेगी। वही लिखा है कि तू तो अपने ही गीत गुनगुनाता रहता है, स्वैर बिहारी मतलब स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले ये मन, तू अपने गीत गुनगुनाता रहता है, अपनी मनमानी करता रहता है। जरा सुन, तू जरा शांति से बैठ मेरी बात सुन, आत्मा कहती है मन से कि तू सुन, संयम का बंधन बंधन नहीं है। अगर हमने संयम का बंधन अपने ऊपर ही, मैंने एक बार कहा था कि लगता है कि बंधन जैसा हम सौगंध दिला रहे हैं तब बांध रहे हैं, कहते मुक्ति का रास्ता है और बंधन पहले डाल रहे हैं, तो कहते हैं कि संयम का बंधन बंधन नहीं है, वरन अबंध दशा का अमंद यशा का अभिनंदन बंधन है। जिस समय हम इस बंधन को स्वीकार कर लेंगे तो क्या क्या होगा, हमको अबंध दशा मिलेगी, बंधन से मुक्त दशा की प्राप्ति होगी और अमंद यशा, तब हमारा यश कैसा होगा, अमंद, कभी धीमा नहीं पड़ने वाला, कभी धीमा नहीं पड़ने वाला यश मिलेगा और अभिनंदन बंधन, तो फिर हमारा अभिनंदन और हमारा बंधन दोनों ही चीज़ें होंगी, इतनी चीज़ें प्राप्त होंगी अगर हम संयम का बंधन स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा मुक्ति रमा को मोहित सम्मोहित को उपेक्षित कर पितरों को संयत को ही क्यों करती है स्वयं परक, अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुक्ति रूपी जो लक्ष्मी है वो और दूसरे लोगों को उपेक्षित करके उनके मोह से मोहित नहीं हो करके जो मोही हैं उनके मोह से मोहित हुए बिना संयमी को क्यों वरण करती है। इसका अर्थ ही है कि संयम हमें मोक्ष के लिए आवश्यक, संयमी ही उसको प्राप्त करते हैं। बहुत आसान है, ट्रांसलेशन वर्क है इसका, बहुत अच्छा। वासना का विकास मोह, सीधी परिभाषा में नहीं आती है, बहुत शार्ट है। वासना का विकास मोह है, जिस समय वासना बहुत विशाल अर्थ में है, पांचों इंद्रियों के अकेली काम वासना से वासना नहीं है, हम किसी भी चीज़ को सुनने चखने सुनने इन सब की जो आकांक्षा रखते हैं वो सब वासना के लाइट है, ये सब मोह है। इच्छा आकांक्षा कामना ये सब उसी में शामिल, तो वासना का विकास मोह है। जितनी जितनी हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जाती है उतने उतने हम मोही कहलाएंगे, लेकिन कर्मा का विकास मोक्ष है। मोह और मोक्ष में इतना फर्क है, कर्मा का विकास होगा तो मोक्ष होगा, वासना का विकास होगा तो मोह होगा। फिर एक जीवन को जलाती है अंधकार है, मोह जो है जीवन को जलाता है, अंधकार है, एक जीवन को जलाती है, जलाती नहीं, शब्दों का फर्क देती है, जलाती मतलब जीवन देती है, श्रृंगार है, कर्मा हमारा श्रृंगार है, वो हमें जीवंतता देती है। वासना की जीवन पर भी अचेतन तन है, वासना किस चीज़ की होती है, ये बाह्य पदार्थों पर, आत्मा के प्रति वासना नहीं होती, शरीर के प्रति होती, चीज़ों के प्रति होती जो बाहर दिखती है। तो कह रहे हैं कि वासना के जीवन पर भी कितनी वासना कहाँ तक रहती है, कितनी देर दूर तक जाती है, तो बोले अचेतन पदार्थ तक जाती है, तन तक चली जाती है, इससे ज़्यादा कहाँ जाएगी। लेकिन करना तो निर्वधि है, करना तो असीम है, जिसका केंद्र संवेदन धर्म चेतन है, जो संवेदनशील चेतना है वहाँ तक ले जाने वाली है करना। करना की कर्णिका से अभिकर झरती है समता की सौरव सुगंध। अब करना को जो है उन्होंने मान लिया कि
कर्णिका है, कमल की जो कर्णिका होती है जिस पर कमल फूटता है, तो नीचे जो नाल कमल नाल उसको कर्णिका बोलते हैं। तो कर्णा की कर्णिका कर्णिका से अविरल झलती उसमें से सुगंध निकलती है। जब कमल खिलता है तो कमल की सुगंध निकलती है, वो काय में से उसकी कर्णिका में से निकलती है। तो ये कह रहे हैं कि कर्णा की कर्णिका से अभिकल झलती, अभिकल मतलब विदाउट एनी इंटरव्यू, ये अभिकल कंटिन्यू अभिकल झलती है समता की सौरभ सुगंध। सौरभ और सुगंध दोनों सिनोनिम्स हैं, एक जगह यूज कर लिए हैं, पर सौरभ का मतलब ही सुगंध। कौन कहता है कि कर्णा से वासना का संबंध है? एक फिलॉसफी चलती है शुद्ध निश्चय नहीं, जिसमें लोग कहते हैं कि कर्णा भी एक तरह का संसार को बढ़ाने वाला कार्य है, वो हमारा स्वभाव है, सब कुछ लोग मानते हैं। लेकिन अच्छा फिर ये शो करना था कि नहीं, कर्णा से वासना का संबंध है कौन कहता है? वो अंध नहीं, मदांध तो हो गई, वो अहंकारी होगा जो ये कहता होगा कि कर्णा भी, कई बार लोग कहते हैं ना कि राग तो राग ही है, चाहे देवगुरु शास्त्र को राग हो या संसार को राग हो, तो कहते ऐसा नहीं, करुणा और आकांक्षा में फर्क है। तो करुणा से वासना का संबंध है ऐसा कौन कहता है? कोई कह सकता है जो आंख वाला नहीं होगा, जिसके श्रद्धा की आंख नहीं होगी, या कि जिसके मत होगा, अहंकार होगा, मदान। ये जो तन है मेरा वतन नहीं है, वतन मतलब देश, अपना देश और पराया देश, अपना और पराया, ये दो चीज़ें कैसे अपन उनको इंटरप्रेट करते हैं? ये तो हमारा देश मतलब हमारा अपना घर है, और वो परदेश फॉरेन विदेश। तो वतन का अर्थ यहाँ पर अपने अपने आत्मा से लिया है। तो यह जो तन है कौन मेरा स्वा है? मेरा आत्मा ही है स्वा। तो ये जो तन है मेरा वतन नहीं है, अब मेरा देश नहीं है, इससे मेरा कोई ज़्यादा बड़ा रिश्ता नहीं है। तन का वतन मेरा वतन नहीं है, इसीलिए तो क्योंकि वो मेरा वतन नहीं है, वो मेरा होता तो उसके टूटने से मैं भी टूट जाता। तो तन का वतन मेरा वतन नहीं है, प्रकृति का आयतन है, ये जो शरीर है ये तो प्रकृति के पंचभूत तत्वों से मिलकर के बनी हुई चीज़ है। जन्मन हारक नर्तन परिवर्तन वर्तन अचेतन है, जो जन और मन का नहीं, जो जन जन के मन का हरण कर देता है और निरंतर परिवर्तित हो करके और नृत्य करता रहता है, वो तो सिर्फ अचेतन ही है। और ये तन जो है अचेतन, यहाँ जो भी दिखाई पड़ता है वो सब अचेतन है, तन भी अचेतन है। फिर इसका क्यों हो गीत गान कीर्तन, फिर क्यों इसके गीत गाए हैं जब भी मेरा आत्मा नहीं तन, इतना तनातन, और इसी को लेकर के भी तनातनी होती है। काफ़ी मस्ती चेत सांगे के लिए कोई तनातनी नहीं है, इस तन को लेकर के बड़ी तनातनी है, स्थाई बनाने का और यतन, और जो ये जो कि टूट जाने वाला है इसी को स्थाई बनाने के सारे प्रयत्न जो है इसी को स्थाई बनाए। सबका स्वभाव शील है, कभी उत्थान कभी पतन। अगर हम देखें यहाँ पर तो सभी का स्वभाव या शील, सभी का स्वभाव या शील क्या है? उत्थान और पतन। जो प्रकृति में है, मैं प्रकृति से चेतन हूँ प्रकाश, लेकिन जो मेरा अपना वतन है वो कैसा है? मैं प्रकृति से बाय नेचर, मैं नेचुरली मैं चेतन हूँ प्रकाश पुंज रतन हूँ, ऐसा रत्न हूँ जो कि प्रकाश पुंज बन करके, या कि ये कह लीजिएगा कि मैं स्वयं ही एक ऐसा रत्न हूँ जो कि प्रकाश टूटाता रहता हूँ। सनातन हूँ नित्यू तन, बहुत पुराना होकर के भी चिर नवीन हूँ मैं, अप टू डेट, बहुत पुराना होने के बाद भी नित्य नूतन हूँ, क्योंकि मेरा परिणाम नूतन होता है। जो शुद्ध द्रव्य है उसका परिणाम तो हमेशा अप टू डेट रहता है, उससे ज़्यादा अप टू डेट कोई चीज़ नहीं होती, इसके पूरा देख पड़ा है अप टू डेट। आधुनिकता बोध,
आत्मिकता का वो तो यही है कि प्रतिक्षण हम बदल रहे हैं, अभी जो हमारी पर्याय है अग्रेषण वो नहीं रहेगी, इससे ज्यादा चिंतित क्या हो सकता है। सुबह हम कुछ और थे, शाम कुछ और हैं, शरीर है, शरीर भी हमारा परिवर्तित हो गया है, हम देख नहीं पाते हैं, इतना माइनर चेंज जो है हमारे समझ में नहीं आता है। सनातन होकर के भी नित्य होता है, ज्ञान रूप का चेतन मेरा पता है, जहाँ ज्ञान और दर्शन पाया जाता है उस चेतन मतलब घर, ज्ञान दर्शन का ज्ञान गुण का जो घर है वही मेरा वतन है। वेदन संवेदन अनंत वेदन है, और अगर उस वतन को मैं जो वेतन देता हूँ वो वेतन क्या है, वेदन संवेदन वही मेरा वेतन है, अर्थात मुझे वो मिलना चाहिए, संवेदना मुझे मिलनी चाहिए, वो मेरा वेतन है, इसलिए मैं वेतन हूँ। मेरा वेतन वा और बा का फर्क रवि और इसलिए मैं वेतन, ये जो तन है मेरा वतन। वही अधिष्ठान है सुख का वधु नवनी, जिसका पुनः मथन नहीं, वही विज्ञान है ज्ञान है मेरी, जिसका पुनः कथन नहीं, वही उत्थान है ध्यान है प्रिय सभी, जिसका पुनः पतन नहीं। ये देखिएगा, अधिष्ठान मतलब आधार, किसका आधार, सुख का आधार, कौन है वो सुख का आधार, वो सुख का आधार वधु नवनीत है, जिसका पुनः मथन नहीं। नवनीत एक बार निकल आने के बाद जैसे उसका मथन नहीं होता, ऐसे ही अपने जीवन की क्रीम हम निकाल लें ऐसा कुछ जिसका कि पुनः मथन ना, तब तो कहलाएगा कि हाँ आपने कुछ पाया है। अभी जिसे मत करके कुछ और निकाला जा सकता है तो वो आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है, जिसके बाद कुछ भी शेष ना है, वही हमारा सुख का आधार है। मतलब सारी संसार की चीज़ें एक तरफ रह जाएंगी, वो सब हटा करके जब हम अपने आत्मा को प्राप्त करेंगे तो वही सुख का आधार जी आशय, वही विज्ञान है ज्ञान है निज रीत। और हमारी अपनी रीत मतलब हमारा अपना ढंग, हमारा अपना ढंग क्या है, हमारा अपना ढंग है ज्ञानवान होना, और ऐसा ज्ञान जिसका पुनः कथन नहीं, ऐसा कुछ कहूँ कि फिर कहने को कुछ शेष न रह जाए, ये स्थिति है जिसका फिर से कथन नहीं, मैंने जो अकथ है जिसे कहा नहीं जा सकता है वो वास्तविक, ये तो जो कथन में आ रहा है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो होगा केवल ज्ञान जिसमें कि हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन करके देखेंगे, वो केवल ज्ञान ही हमारा वास्तविक ज्ञान है। हमारा आधार क्या है, हमारे सुख का आधार क्या है, तुम्हारी अपनी आत्मा है जो अपनी परम दशा को प्राप्त होगी। हमारा ज्ञान क्या है, हमारे अपना जीने का ढंग क्या है, हमारा अपना ज्ञान क्या है जिसको हम कह नहीं सकते, और हमारा उत्थान एक्सट्रीम क्या है, और हमारा स्थान, स्थान मतलब हमारा उत्थान भी और स्थान भी क्या है, वह ऐसा कोई प्रिय संगीत जिसका कि फिर पतन नहीं, ऐसा आत्मा का संगीत भीतर से बज उठे कि फिर जो जिससे हमें गिरना नहीं पड़े। डूबता हुआ भी
क्या कहा था विगत में ज्ञात नहीं, अनागत की गात थी अज्ञात ही, आगत की बात है अनुकरण की नहीं। जहाँ तक सत्य की बात है, देश विदेश में भारत में भी सत्य का स्वागत है। आवाज वृद्धि प्रवृत्तों से किंतु खेद इतना ही है कि सत्य का ये स्वागत बहुमत कर आना है। कहाँ क्या था विगत में ये तो नहीं मालूम, बहुत सारा समय गुजर गया। अनागत की गात भी अज्ञात है, आगे क्या होने वाला है वो भी मुझे नहीं मालूम। क्या बीत चुका नहीं मालूम, क्या आगे होने वाला है। आगत की बात जो अभी नहीं आया, जो आने को है वो कहलाएगा आगत। आगत मतलब वर्तमान, विगत अनागत। इस तरह से मैं वर्तमान भूत भविष्य ऐसा ले लूं। आगत की वर्तमान की बात है, अनुकरण की नहीं। जहां तक सत्य की बात है, क्योंकि सत्य अनुकरण की बात नहीं होती। ठीक कर लो, इनके बात में परेशानी हमें को होगी, आप थोड़ी वो हो नहीं पा रहा है फिर से।
बढ़ रहा है इनका जीवन, अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है दोनों का, लेकिन एक का लक्ष्य क्या है, तर्क चिंतन के साथ एक तो जो है निश्चित विवेक करके आत्मा और शरीर दोनों में से अपने आत्मा को ग्रहण करने के लिए शांत भाव से बैठा है ध्यान में, और दूसरा बगला विषय चिंता, कब मछली आवे कब भोजन करे, तो ये एक साधु है समझता है एक दूसरा समझता है, दोनों भाव से एक से दिखाई पड़ते हैं। अच्छा प्रतीक
साधु
अच्छा हो अच्छी हिंसा पलती है वहीं घर बैठे हुए, लेकिन साथ ही साथ उन कलमों में हिंसा की दुगनी ज्वाला जलती है। उनकी कलम कलम
लेखनी
लेकिन उनकी लेखनी में हिंसा की दुगनी ज्वाला जलती है, इसलिए लगता है कि इस युग में सत्युग साथ सुधार हो गया है।
कामना की है
सही हो गया है मुझे अब तुलसी के हृदय में आन गिरा देता ऐसा हो गया कि जैसे गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं है जड़कारी के और धाम उसके लिए तो ध्रुप ही सहारा है मैं हम उसके पास कुछ नहीं है ऐसे गरीब आदमी के लिए हे राम आप तुलसी के हृदय में गिरा रहे इतने चुनती हो वो ये कि प्रभाकर प्रचंड प्रभाकर भी सरल सौन हो गए तो पूरा चेंज हो गया लाइफ स्टाइल चेंज हो गया विरोध की ज्वाला से जलते विलोम वातावरण प्रतिकूल वातावरण है और सब तरफ विरोध है इसके बावजूद भी वो सब अनुलोम अर्थात हमारे फेवर चेतना की समग्र सत्ता जो अभी तक भय से संकोचित थी मूर्छित थी वो अब जो है अभय निश्चिंत और जागृत हो रही है इसलिए वो लोग पुलकित हैं प्रतिधान से अर्थात आपकी ओर से प्रतिधान जब मैं नाम पुकारो रिटर्न करें प्रति ध्वनि मैं ध्वनि करूँ आप उस पर रिटर्न तो प्रतिधाम से प्रतिनाम से मधुर आपके वहाँ से निकले आपका नाम लेने से कोई आवाज़ मेरे पास लौट के आती है आपका जहाँ आप हैं उसका स्मरण करने से मेरे पास रिटर्न आता है क्या मधुर ध्वनि की तरंग आ रही है शर्मा पर कानों पर कि बस वो सब सुखद हो वो मतलब का ज्ञान है तो अब जो है जीवन ही पूरा सुखद हो गया है और वो मतलब सबके लिए कर निशान खत्म हो गया
नहीं
समन्वित है वह सहित माना जाता है और सहित का भाव भी साहित्य माना जाता है साहित्य किसे कहेंगे दीदी परिभाषा जो हित से युक्त है या जो हित से समन्वित है वही साहित्य जो हित के साथ है वो यानी जिसके अवलोकन से सुख का संपादन हो सही साहित्य वही है साहित्य वही है जिसके कि हमारा हित ऐसा साहित्य ही पकड़ी है
साहित्य की परिभाषा
साहित्य की परिभाषा और ये धर्म कर्म से विमुख होकर पाप कर्म में प्रमुख होकर अनुचित रूप से अनार्जन कर मान का भूखा बन दान की अपेक्षा समुचित रूप से ना आवश्यक का भोजन कर बिना दान भी जीवन चलाना पुण्य की निशानी है श्री रक्षा देवी क्या धर्म कर्म से विमुख होकर के और पाप कर्म में प्रमुख होकर के और अनुचित रूप से धन का अर्जन कर लिया और फिर बाद में मान दशा मान बढ़ाई काल में तो दान दे दी तो दान ऐसे दान से तो अच्छा है कि समुचित रूप से अर्थात नीति न्याय पूर्वक आवश्यक जितना आवश्यक उतने धन का अर्जन करना और बिना दान दिए जीवन चलाना ये पुण्य की निशानी नहीं है हमारे पास पाप करके देने से तो अच्छा है पहले कीचड़ से लपेटो शरीर फिर पानी से धो इससे तो अच्छा है कि कीचड़ में लपेटा ना तो कहते कि आवश्यक नीति न्याय पूर्वक कमा करके दान नहीं भी दें तो भी श्रेयस्कर है लेकिन अन्याय पूर्वक दान कमा करके दान देने से तो बेहतर है आगे उसी को उदाहरण दे रहे कीचड़ में पद रख कर लखपत को निर्मल जल से स्नान करने की अपेक्षा की कीचड़ की उपेक्षा कर दूर रहें दान देने वाले के लिए बस अतनी निशान को कैसी नहीं सुई है ना वही हो फिर से बिछड़े तो सज्जन मिलते वृद्धावस्था वृद्धावस्था में दो लोग मिले परस्पर परस्पर प्रेम वार्ता होती है, गले से गले मिलते हैं, दर दर रंग से एक ने पूछा है दूसरे से कि तुमने क्या साथ है पर के लिए और अपने दोनों की तुमने क्या साधना की। वो उत्तर देता है कि द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ना, मतलब द्वैत शरीर और आत्मा को एक में मानना, द्वैत और शरीर से आत्मा को पृथक करना अद्वैत, द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ना हो, टूटे दो टुकड़ों को एक रूप देना हो तो सुनो सुई होना सीखा, तो सुनो सुई होना सीखा है। इतने दिन में क्या साधना की है, सबको परस्पर जोड़ने की साधना की है। फिर दूसरे ने भी पूछा कि इस दीर्घ जीवन में ऐसी कौन सी साधना की तुमने फलस्वरूप सबके स्नेह भजन। उत्तर मिला कि कर्म के उदय में जो कुछ होना सो होना है, सो थोड़ा सा जरा होना सीखा है, पृथ्वी की तरह जरा सहनशील होना सीखा है, इसलिए जो है मुझे सबका स्नेह मिलता है। इसने भाजन कैसे बन गए, तो कहते हमने धरती की तरह तरह सहनशील होना सीखा है, दूसरे के सम्मुख अपनी वेदना पर खुला रहना नहीं सीखा, दूसरे के सम्मुख अपनी वेदना पर आंसू नहीं आए हैं, बल्कि हम दूसरा आकर के अपनी व्यथा कथा सुनाता और रोता हो तब तो मन व्यथित होता है, अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं है, दूसरे को पीड़ित होता है आकर के तो स्वयं पीड़ा में डूब जाए और तत्काल उसके आंसू जरा धोना सीखे। इसलिए साधना कुल मिला के क्या साधना की है कि परस्पर लोगों को जोड़ना, उन्हें कैंची की तरह तोड़ना नहीं, उन्हें सुई की तरह जोड़ना और सहनशील होना पृथ्वी की तरह, और कोई अगर अपनी वेदना नहीं सुना करके अपनी वेदना से नहीं दुखी होना बल्कि दूसरे के दुख से दुखी होना सीखा है और तत्काल दूसरे के आंसू में इस युग के दो माना अपने आप को खोना चाहिए। इस युग के दो माना अपने आप को खोना चाहते हैं, उसमें एक भोग रात को मध्य भाग को चुनता है, एक ने जो है भोग रात को और मध्य भाग को चुन लिया, उसको खोलो रुक गया उसमें, और एक योग याद को बंद ध्यान को जाग योग और वंदनीय ध्यान को चुनता है, कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से बोलते दोनों निकलते के मुक्त हो गए, एक शव की तरह मेरा पड़ा है, एक नशे में दुख शव की तरह पड़ा है और एक शिव के समान भरा है खड़ा है, वो क्या वो भी खोया हुआ है लेकिन शिव के समान अभी शव शव हम नहीं कह सकते कि
श्री विद्यासागर गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे, श्री विद्यासागर गुरुवर हमारे
Thank you.